नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
तो आज हम पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंध से अध्याय क्रमांक 22। अध्याय का शीर्षक है कृष्ण द्वारा अविवाहिता गोपियों का चिरहरण। श्लोक संख्या 31 और 32।
हे स्तोक कृष्ण हे अंशो श्रीदामन सुबलार्जुन विशाल वृषभोजस्विन् देव प्रस्थवरूथप पश्यते तान् महाभागान् परार्थैकांत जीवितान् वात वर्षा तप हीमान् सहन्तो वारयन्ति नः। हे स्तोक कृष्ण हे अंशो श्रीदामन सुबलार्जुन विशाल वृषभोजस्विन् देव प्रस्थवरूथप पश्यते तान् महाभागान् परार्थैकांत जीवितान् वात वर्षा तप हीमान् सहन्तो वारयन्ति नः। हे स्तोक कृष्ण हे अंशो श्रीदामन सुबलार्जुन विशाल वृषभोजस्मिन् देव प्रस्थवरूथप पश्यते तान् महाभागान् परार्थैकांत जीवितान् वात वर्षा तप हीमान् सहन्तो वारयन्ति नः।
हे स्तोक कृष्ण हे अंशो श्रीदामन सुबलार्जुन विशाल वृषभोजस्मिन् देव प्रस्थवरूथप पश्यत्यैतान् महाभागान् परार्थैकांत जीवितान् वात वर्षात्पहि सहन्तो वारयन्ति नः।
शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा श्रील प्रभुपाद की।
हे स्तोक कृष्ण, हे स्तोक कृष्ण, हे अंशो, हे अंशु, श्रीदामन सुबलार्जुन, हे श्रीदामा सुबल तथा अर्जुन, विशाल वृषभ ओजस्विन, हे विशाल वृषभ तथा ओजस्वी, देवप्रस्थ वरुथप, हे देवप्रस्थ तथा वरुथप, पश्यत, जरा देखो तो, एतान, इन महाभागान, परम भाग्यशाली, पर अर्थ, अन्यों के लाभ हेतु, एकांत, एकांत भाव से, जीवितान, जिनका जीवन, वात, वायु, वर्षा, वर्षा, आतप, सूर्य की तपन, हिमान तथा बर्फ, सहंतः, सहते हुए, वारयंती, दूर रखते हैं, नह, हमारे लिए। अनुवाद। भगवान कृष्ण ने कहा, हे स्तोक कृष्ण तथा अंशु, हे श्रीदामा सुबल तथा अर्जुन, हे वृषभ ओजस्वी, देवप्रस्थ तथा वरुथप, जरा इन भाग्यशाली वृक्षों को तो देखो, जिनके जीवन ही अन्यों के लाभ हेतु समर्पित है। ये हवा, वर्षा, धूप तथा पाले या बर्फ को सहते हुए भी इन तत्वों से हमारी रक्षा करते हैं। तात्पर्य, भगवान कृष्ण पाषाण हृदय कर्मकांडी ब्राह्मणों की पत्नियों पर अपनी दया का दान करने की तैयारी कर रहे थे, और इन श्लोकों में वे इंगित कर रहे हैं कि अन्यों के कल्याण के लिए समर्पित वृक्ष भी उन ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है जो परोपकारी नहीं है। निसंदेह कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को इस बात का गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातं, सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं, साद्वैतं सावधूतं, परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं, श्रीराधाकृष्णपादा, सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिकाकांत राधा का, तप्त कांचन गौरांगी, राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी, प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो सबसे पहले सब सुनने वाले भक्तों का मैं आशीर्वाद की याचना करता हूँ, ताकि मैं भगवान की स्तुति मेरे शुद्धिकरण के लिए मेरे क्षमता के अनुसार कर सकूँ। तो बहुत बार हम
अलग अलग क्लासेस में या अलग अलग स्पीकर्स के द्वारा ये मुद्दा बहुत बार सुनते हैं कि कृष्ण कथा सुनो, कृष्ण कथा सुनो, लेकिन एक्चुअल कृष्ण कथा बहुत कम बार बताई जाती है। एकदम लेसन्स एंड स्ट्रेस ऑन द पॉइंट्स हियर कृष्ण कथा। तो इसके संबंध में बहुत सारे श्लोक भी हैं। तो पहले स्कंद में छठे अध्याय में 34th श्लोक, जो प्रसिद्ध श्लोक है, एतद् हि आतुर चित्तानां मात्रा स्पर्शे छया मुहुः भवसिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्। तो जो जीव बहुत आतुर है, उनके इंद्रियों को इंद्रिय विषय के वस्तुओं के साथ संपर्क करने के लिए बहुत उत्सुक है, बहुत आतुर है, ईगर है, और वो भी बार बार, एक बार नहीं बार बार ऐसा करने के लिए उत्सुक है, तो ऐसा देखा गया है दृष्ट, तो ऐसे परिस्थिति ये भव सिंधु, तो ऐसे भवसागर को पार करने के लिए प्लव बोट क्या है, हरिचर्या अनुवर्णनम। तो ये अनुवर्णनम उसका ट्रांसलेशन प्रभुपाद करते कॉन्स्टेंट डिस्क्राइबिंग कृष्णाज एक्टिविटी। सो अनु इज नॉट जस्ट फॉलोइंग, बट अनु मीन्स ऑल्सो कंटिन्यूअसली। तो ये एक श्लोक है जिसमें कंटिन्यूअस कृष्ण कथा कर सुनने के लिए या वर्णन करने के लिए कहा गया है। या कुंती महारानी की प्रार्थना में भी एक श्लोक आता है, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनः तयेव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्भुजम्। तो जो लोग भगवान की कथा अभीक्ष्णशः, अभीक्ष्णशः मीन्स निरंतरम कंटिन्यूअस सुनते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं, स्मरण करते हैं, और अन्य लोग ये कर रहे उसमें खुद आनंद लेते हैं, नंदंती, तो ऐसे ही जनहा ते एव पश्यंती, वही लोग देखेंगे। कब देखेंगे? अचिरेन। तो तावकम मीन्स त्वदीयम, कुंती महारानी भगवान कृष्ण को बोल रही है कि आपके तावकम पदाम भुजम, आपकी चरण कमलों को तुरंत ही या बिना बिना विलंब देखेंगे। और ये आपके चरण कमल कैसे हैं? भव प्रवाह उपरमम, ये भव प्रवाह, ये जन्म मृत्यु का प्रवाह को रोकने वाले ये आपके चरण कमल हैं। या चतुश्लोकी भगवद गीता में भी 10.8, अहम सर्वस्य प्रभव मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति माम बुधा भाव समन्वितः। तो मुझसे ही सब कुछ आता है और शुरुआत होता है, प्रभव एंड प्रवर्तते। और ये जो जानता है इति मत्वा, ये जानकर मानकर बुधा भाव समन्वितः, तो भगवान का भजन करना वो प्रारंभ करता है। लेकिन ये भजन में आगे जाकर क्या होता है वो अगले श्लोक में बताया, मच्चित्ता मद्गतः प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो उनके चित्त में मेरे बारे में ही विचार चलते हैं, वो मुझे ही अपना दिल का टुकड़ा, मत गत प्राण, जरा हिंदी में, नॉर्मल हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो अपना प्राण मुझे ही बना देते हैं। और बोधयंतः परस्परम, मेरे बारे में ही आपस में चर्चा करते हैं, एंड कथयंतश्च माम नित्यम, हमेशा मेरे बारे में ही कथा करते हैं। तो हमारी पहली स्टेप तो कुछ हद तक हुई है, लेकिन ये दूसरा श्लोक अभी तक नहीं हो रहा है। बहुत भक्त एकत्र आते हैं, लेकिन उस टाइम डायरेक्टली कृष्ण कथा नहीं होती, लेकिन बाकी ही सब्जेक्ट्स के बारे में ज़्यादा चर्चा होती है। तो ये भी एक जरा विचार करने लायक श्लोक है। तो ये 3-4 श्लोक और अन्य भी बहुत सारे श्लोक है जिसमें कृष्ण के बारे में कथयंतश्च माम नित्यम, मेरे बारे में हमेशा नित्यम कथा करते हैं और उसमें आनंद लेते, तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो ऐसा करते करते बाकी सभी दुखों को वो अपने आप भूल जाते हैं। तो ये स्टेप एक्चुअली धीरे धीरे साधक के जीवन में आनी चाहिए। तो जो भी भक्त ऐसे है कि जो कुछ श्लोक को
गाकर सुना सकते हैं या कृष्ण की लीला के बारे में कुछ जरा डिटेल अटेंशन देने वाला पॉइंट बता सकते हैं। तो ऐसे भक्तों के साथ अगर हमारा संघ हो तो हमारी चेतना अच्छी रहेगी। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, श्री श्री गौर निताय की। नहीं तो केवल भक्ति में साल बढ़ रहे, 5 साल 7 साल 10 साल, लेकिन जो कुर्सी है जैसे हिल रही है लेकिन वो उधर ही है, आगे नहीं बढ़ रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि कृष्ण कथा के बारे में ये श्लोक आज का जो बोर्ड पर लिखा है, तो इसके संबंध में शुरुआत होती है कि भगवान कृष्ण ग्रीष्म ऋतु में, तो जो 6 ऋतु हैं उसमें ये गर्मी के मौसम में अप्रैल मई में वृंदावन से जरा दूर जाते हैं, अपने 9 लाख उनके खुद के और उनके मित्रों के कई लाखों गाय लेकर दूर जाते हैं। और उस दिन ऐसा होता है कि वो दोपहर का टिफिन नहीं लेके जाते, उनकी कुछ ऐसी योजना हो जाती है या नंद महाराज यशोदा माता को दोनों को बोलते कि आज हम जल्दी जाएंगे और दोपहर को ये रास्ते में मिलेंगे, आप भी अपने कुछ सेवकों को उधर हमारा लंच वहाँ पर लेके भेजना, तो उनसे हम कलेक्ट करेंगे। हर दिन वो लेके जाते थे लेकिन उस दिन वो जानबूझकर लेके नहीं गए, शायद उनका प्लानिंग था कि ब्राह्मणों की पत्नियों के ऊपर कृपा करने के लिए एक एक्सक्यूज है, एक बहाना था ये। तो बहुत दूर चले गए और सुबह से 8 बजे से लेकर 12-1 बजे तक, कितने घंटे हो गए, 4-5 घंटे गायों के पीछे चल रहे, उनको चरा रहे, और अलग अलग जो पेड़ है, अलग अलग छोटी गलियां हैं या रास्ते हैं उससे गुजरकर अब उनको बहुत थकान महसूस हुई है। तो हम एक्चुअली नेचर के क्लोज में नहीं रह रहे, इसलिए हमको इतना एक्चुअल फीलिंग क्या है वो इतना नहीं आएगा, केवल कल्पना ही कर सकते हम। तो इतने गर्मी के मौसम में 4-5 घंटे चलना, हम आधा घंटा भी बाहर आते हैं जरा रूम के तो जरा गर्मी लगने लगती है, अंदर जाके फैन ऑन करते हैं, लेकिन इतने सारे घंटे चलने के बाद फिर वो सब एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। वो वृक्ष इतनी छाया थी, इतना उसका डायमीटर था, कई मीटर का होगा वो, आजकल ऐसे वृक्ष देखना बहुत मुश्किल है, वृक्षों की साइज भी छोटे छोटे होती जा रही है। तो मुझे याद है मेरे मामा के गांव में मैं जाता था गर्मियों की छुट्टी में, तो एक पीपल का एक वैरायटी का वृक्ष था, वो इतना बड़ा था कि वो जगह रहने वाले जो 15-20 फैमिली थे, तो उनके गाय बैल बकरियां, उनकी बैलगाड़ी, तो ये सब दोपहर को वो पेड़ के नीचे, पेड़ के जो रूट्स आए हैं ऊपर उसको बांधते थे, पत्थर को बांधते थे, बैलगाड़ी को बांधते थे। तो ऐसा करीबन 150-200 लोग एक पेड़ के नीचे छाया में बैठते थे। तो ये 1988 या 89 की बात होगी, लेकिन अब वैसा वृक्ष बहुत रेयर हो गया। तो जरा 5000 वर्ष पहले कैसा वृक्ष होगा वो हम कल्पना कर सकते हैं। तो इतने विशाल वृक्ष के नीचे उसकी छाया भी ऐसी एकदम घनी छाया, सूर्य की किरण उधर नहीं आ रही है, तो ऐसे वृक्ष के नीचे वो बैठे हैं और फिर ये श्लोक बोल रहे हैं। अभी जो श्लोक हमने गाया तो अपने प्रमुख जो मित्र गोप है उनका नाम यहाँ पर लिया जा रहा है। तो काउंट करेंगे कि कितने नाम है, 10 नाम है। तो स्तोक कृष्ण अंशु श्रीदामन सुबल अर्जुन, 5-5। तो विशाल वृषभ ओजस्वी देव प्रस्थ और वरुथप, तो ये प्रमुख गोपों के नाम ले रहे, लेकिन साथ साथ ये एक्चुअली 10 जो 10 डायरेक्शंस है उनको भी जरा हिंट कर रहे हैं कि आप भी जरा नोट करो कि ये जो वृक्ष है ये बहुत महाभाग है। तो कैसा महाभाग है, पश्यत एतान महाभागान, तो ये जो वृक्ष है ये महाभाग है, क्योंकि पर अर्थ, एक है स्व अर्थ और दूसरा है पर अर्थ, दूसरों के लाभ के लिए ही ये जीवितान जी रहा है और खुद वात वर्षा तप हिम, ये चार जो परेशानियां है वो खुद सहन कर रहा है। और नह यानी कि हमको वारयंती, हमको वो रक्षा प्रदान कर रहा है। तो एक्चुअली ये श्लोक से मिलता जुलता एक श्लोक जीव गोस्वामी ने अपने गोपाल चंपू नामक ग्रंथ में लिखा है। तो जीव गोस्वामी इन्होंने अकेले ने भागवतम के ऊपर तीन टीकाएं लिखी है, क्रम संदर्भ, बृहद क्रम संदर्भ, और ये विशेष करके 10th कैंटो में ये गोपाल चंपू। तो चंपू यानी कि ऐसा काव्य जिसमें गद्य भी है और पद्य भी है। तो भागवतम या भगवद्गीता इसमें केवल पद्य है, चार पद है हर एक श्लोक में, तो जो ऐसा गाया जा सकता है वो पद्य। लेकिन चंपू यानी कि ऐसा काव्य कि जिसमें इसका कॉम्बिनेशन है गद्य और पद्य का। तो कुछ कुछ जगह भागवतम के ऐसे श्लोकों को लिया है और फिर उन्होंने अपने श्लोकों को कंपोज किया है, सेम मीनिंग सिमिलर मीनिंग, लेकिन थोड़ा सा कुछ डिटेल या इन बिटवीन द श्लोकास क्या प्रसंग हुआ, तो वो कौन सा वन था, तो क्या स्थिति थी, उसका वर्णन कुछ प्रोज पोएम एंड प्रोज में किया है। तो वास्तव में वैदिक समय में वो व्यक्ति बहुत विद्वान माना जाता है कि जो पद्य को गद्य में कन्वर्ट कर सकता है और गद्य को पद्य में कन्वर्ट कर सकता है। तो लेकिन आजकल का इंटेलिजेंस का डेफिनेशन अलग अलग हो गया, लेकिन उस टाइम का बुद्धिमान व्यक्ति का ये लक्षण था। तो जीव गोस्वामी इतने विद्वान थे तो उन्होंने खुद कितनी बार भागवतम पढ़ा होगा, प्रीवियस आचार्य श्रीधर स्वामी उनके पहले आए उनकी भी टीका पढ़ी होगी, और उनके पहले जो आचार्य हुए उनकी टीका पढ़ी और फिर अपनी टीका उन्होंने लिखी। तो हम षड गोस्वामी अष्टकम गाते और वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको, तो उनके वैराग्य के साथ साथ उनका अध्ययन करने का स्टेमिना भी कितना था ये भी हमें सीखना चाहिए। और उन्होंने जो लिटरेचर बनाया है तो उसको भी पढ़ने के लिए समय देना चाहिए। तो ये बात एक्चुअली भगवद्गीता के 17वें अध्याय में, जिसमें ऑस्टेरिटी ऑफ द माइंड, तो इसके बारे में प्रभुपाद लिखते हैं, ये प्रसिद्ध श्लोक है, मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिर इत्येतत् तपो मानसम उच्यते। तो मन का तपस्या वो है कि समहाउ और अदर कुछ ना कुछ करके मन प्रसाद, मन को जरा संतुष्ट रखना चाहिए, सेटिस्फाइड रखना चाहिए। सौम्यत्वम, सौम्यत्वम यानी कि दूसरों को कुछ हानि पहुंचाने की योजना मन में नहीं बनानी चाहिए, प्लान टू डिस्ट्रॉय समवन, पुल हिम डाउन, या ऐसे योजना मन में नहीं बनानी चाहिए। मौनम, ग्रेविटी या मननशील होना चाहिए, जो भी शास्त्रों की अच्छी बातें सुनते तो उसके ऊपर जरा चिंतन मनन होना चाहिए, ये भी मन की तपस्या है। और आत्मविनिग्रह, कुछ चीजों से मैं दूर रहूं, मोबाइल इंटरनेट से जरा दूर रहूं, ये मन का एक्चुअली तपस्या है। और भाव संशुद्धि, स्वयं के अस्तित्व की शुद्धि करने के लिए प्रयास। तो ये पांच चीजें भाव संशुद्धि इत्येतत् तपो मानस मुच्यते। तो इसके तात्पर्य में परपोर्ट में प्रभुपाद पॉइंट लिखते हैं, सेटिस्फैक्शन ऑफ द माइंड कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली बाय टेकिंग द माइंड अवे फ्रॉम थॉट्स ऑफ सेंस एंजॉयमेंट। द मोर वी थिंक ऑफ सेंस एंजॉयमेंट द मोर द माइंड बिकम्स डिससेटिस्फाइड। इन द प्रेजेंट एज वी अननेसेसरीली एंगेज द माइंड इन सो मेनी डिफरेंट वेज फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड सो देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द माइंड बिकमिंग सेटिस्फाइड। तो बहुत सारे न्यूज विच आर नॉट नेसेसरी, प्रभुपाद वो पॉइंट लिख रहे हैं, इन द प्रेजेंट एज वी अननेसेसरीली एंगेज द माइंड इन सो मेनी डिफरेंट वेज फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो ये एक प्रकार का सेंस ग्रेटिफिकेशन है कि जो चीज हमारे जीवन में रिलेवेंट नहीं है उसके बारे में जिज्ञासा करना, ये भी एक प्रकार का सेंस ग्रेटिफिकेशन है. एंड सो देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द माइंड बिकमिंग सेटिस्फाइड. तो नेक्स्ट सेंटेंस, द बेस्ट कोर्स इज टू डाइवर्ट द माइंड टू द वैदिक लिटरेचर विच इज फुल ऑफ सेटिस्फाइंग स्टोरीज एज इन द पुराणास एंड द महाभारत. वन कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस नॉलेज एंड दस बिकम प्यूरिफाइड. द माइंड शुड बी डिवॉइड ऑफ डुप्लीसिटी. मौनम. तो ये सेंटेंस भी जो गोपाल चंपू ग्रंथ से हम जो चर्चा करने वाले थोड़ी बहुत, तो उससे संबंधित है. तो ये पेड़ के नीचे सब अपने गोपों को बुलाते हैं, हर एक का नाम लेते हैं और फिर पेड़ की तरफ हाथ दिखाकर ये श्लोक बोल रहे हैं. तो इससे मिलता जुलता जो श्लोक है जो जीव गोस्वामी ने लिखा है, तो भी मैं गाकर थोड़ा उसका अर्थ बताने का प्रयास करता हूं. ये ते नांगत एव किंतु गुणतः अप्यद्धा महंतो मता यत्तापादि निवारण है स्ववपुषा जीवान अवंतः स्थितः येषाम एव च जन्म यत्तु फलवद् दृश्येत तच्छेत्थम अप्यु उहध्वं यद अशेष जीवनतया राजन्ति अमि सर्वतः. तो ये वृक्ष येते न अंगत एव किंतु गुणतः, ये अपने केवल अंग से नहीं लेकिन गुणों से भी बहुत महान है, क्योंकि यत तापादि निवारण ही, ताप इत्यादि से निवारण कर रहे हैं. स्ववपुषा, अपने स्वयं की वपु से, शरीर से वो ताप इत्यादि का निवारण कर रहे हैं. और जीवान, जीवों को अवंतः सुरक्षा प्रदान करते हुए यहां पर स्थित है. येषाम एव च जन्म यत्तु फलवद, इनका ही जन्म केवल फलवद है, वो सफल है. और इनको खुद भी आप देख सकते हैं, दृश्येत तच्च इत्थम अपि, ये खड़े हुए अवस्था में आप देख सकते हैं. और उहध्वम यद अशेष जीवनतया, सभी अन्य जीवों की जीविका भी इनके जीने के कारण ही चल रही है. तो उनका लाइवलीहुड ये पेड़ों के कारण ही है. तो ऐसे बहुत कृष्ण को आनंद देने वाले जो वृक्ष है, ये स्वयं कृष्ण भी देखते हैं, अपने गोपों को भी बोलते हैं आप भी देखो, और फिर कहते हैं कि अभी हमने उनसे सेवा ली है, पेड़ के नीचे बैठकर राहत पाई है, तो अभी आप ये पेड़ों की स्तुति करो. तो सब गोप बोलते हैं कि एक्चुअली आप ही कवियों में शिरोमणि हैं, हमारी कविता तो इतनी अच्छी नहीं होगी लेकिन आपने बनाई हुई कविता ये ज्यादा विशेष होगी, तो आप ही इसको इसकी स्तुति कीजिए. तो फिर ये अगला श्लोक भी आता है जिसमें 12 चीजों के बारे में, तो ये दूसरों के ऊपर परोपकार कैसे करते हैं. तो पत्र पुष्प फल छाया मूल वलकल दारुभिः गंध निर्यास भस्मास्थि तोक्मह कामान वितन्वते. तो इसमें 12 चीजें दी हैं. तो कुछ वृक्षों को फल है तो फलों के द्वारा वो दूसरों की सेवा करते हैं, कुछ वृक्षों को फल नहीं है, फूल आते हैं. तो पत्र पुष्प फल, या कुछ पेड़ों को ना तो फूल है ना तो फल है तो केवल छाया देते हैं वो, या कुछ पेड़ों को इतनी घनी छाया नहीं है तो केवल उनके रूट्स, मूल या वलकल, उनकी जो बार्क है ट्री बार्क, या दारू भी, या उनकी लकड़ी कुछ खाना पकाने के लिए या कुछ अन्य घर वगैरह बांधने के लिए, या कुछ पेड़ों को बहुत छोटे है, अच्छा गंध है, गंध और निर्यास या उनका रस है, और भस्म, भस्म एक्चुअली राख, जलने के बाद राख भी अलग अलग चीजें साफ करने के लिए काम में आती है, और अस्थि यानी कि उनके सीड्स, अस्थि तोकमह यानी कि जो कलियां है वो भी लोग लेते हैं, जैसे टगर के फूल, टगर की कली लेते हैं और फिर अगले दिन वो फूल जाती है. तो ये 12 चीजों के द्वारा ये पेड़ भी सेवा कर रहे हैं। तो ये पेड़ इतने विशेष है कि ये दूसरों के ऊपर परोपकार कर रहे हैं, और इनका परोपकार ये निरपेक्ष भाव से है। जनरली लोग दैव वशात कुछ अच्छे काम करते हैं, दूसरों के ऊपर उपकार करते हैं, लेकिन कुछ जरा भाव रहता है कि अब मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, भविष्य में जाकर मुझे इन अच्छे कार्यों का कुछ रिटर्न मिलेगा। लेकिन जो सत्वगुण वाली जो चैरिटी है तो उसके बारे में कहा है, दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिने देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। तो केवल कर्तव्य समझकर, दातव्यम इति यद्दानं दीयते, जो दान दिया जाता है, और अनुपकारिने ऐसे व्यक्ति को दिया जाए कि जो वापस मेरे ऊपर उपकार नहीं कर सकता, मैं अभी उसको मदद कर रहा हूँ लेकिन भविष्य में वो मेरे ऊपर उपकार करने की क्षमता नहीं रखता। तो ये हु इज क्वालिफाइड टू रिसीव चैरिटी, उसके लिए अच्छा मुद्दा है ये। लेकिन जनरली ये भाव लोगों का रहता नहीं, देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। तो ये पेड़ों को ऐसा बिल्कुल भाव नहीं है, फल दे रहे हो दूसरों के लिए या छाया दे रहे दूसरों के लिए, लेकिन अब भविष्य में इन लोगों के द्वारा हमारी कुछ सेवा होगी, हमें पानी डालेंगे या हम कुछ हमारी सुरक्षा करेंगे, ऐसा कुछ भी भाव नहीं है। तो ये भी उनके महानता या महाभाग ये शब्द का एक विशेषण है। तो ऐसे वृक्ष इन जनरल भी बहुत भाग्यशाली है, और ये वृक्ष तो अभी वृंदावन में खड़े हैं और वृंदावन में ब्रजवासियों की सेवा कर रहे हैं, उनको छाया प्रदान कर रहे हैं, उनको फल प्रदान कर रहे हैं, तो इसलिए वो और भी विशेष है। तो ब्रजवासियों की सेवा बहुत विशेष है। तो यहां पर एक्चुअली कंपैरिजन हो रही है, आगे जाके हम देखेंगे कि ब्राह्मणों की और पेड़ों की कंपैरिजन हो रही है। तो जो जीव हिल भी नहीं सकते, एक जगह खड़े हैं, वो भी दूसरों के ऊपर ये कृपा कर रहे, उपकार कर रहे हैं। लेकिन जो ब्राह्मण इतने विद्वान है, इतने शास्त्रों का नॉलेज है, लेकिन वो भी ये परोपकार करने का भाव नहीं रखते। तो इसके संबंध में एक सुभाषित भी आता है। अच्छा, तो परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय इदं शरीरम्। तो ये तीन उदाहरण दिए हैं। तो जो नदियां हैं वो दूसरों के ऊपर उपकार करने के लिए ही बहती है। नदी में आकर सब लोग साफ सफाई करते हैं, अपना शरीर धोते, प्राणियों के धोते, कपड़े धोते, बर्तन धोते, नदी को गंदा ही करते, लेकिन फिर भी नदी कंप्लेन नहीं कर रही है, बहते जा रही है, परोपकार करते जा रही है। और जो फल भी है, वृक्ष भी है, फलंती वृक्षः, फल भी वृक्ष दे रहे दूसरों के ऊपर उपकार करने के लिए, और जो गाय है वो भी दूध दे रही है केवल दूसरों को, दूसरे के ऊपर उपकार करने के लिए। तो उसी प्रकार से इदम शरीरम, तो ये शरीर भी दूसरों के ऊपर उपकार करने के लिए ही है। तो एक इनसिग्निफिकेंट वृक्ष एक तरफ देखा जाए, नारद मुनि को जब नलकुबेर और मणिग्रीव ये दोनों अनादर करते हैं तो उनको श्राप दिया जाता है कि आप पेड़ बन जाओ। तो जब भी पेड़ बन को देखते हैं तो ये विचार आता है, अरे जो बहुत कामुक है, जो अपने शरीर को दिखाना चाहता है, कपड़े नहीं पहनना चाहता है, वो ये वृक्ष बना है। तो एक तरफ तो एक ऐसा निगेटिव पॉइंट है ये ट्रीज के बारे में, लेकिन ऐसे कामुक व्यक्ति में भी अच्छाई देखना कि भगवान के ये श्लोक से हम सीख सकते हैं। जनरली हमारी दृष्टि अन्य लोगों के केवल निगेटिव पॉइंट्स पर ही जाती है, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड कैसी होनी चाहिए ये उदाहरण से हम सीख सकते हैं। तो एक और भी एक अच्छा श्लोक है कि कैसे हर एक व्यक्ति में जो पॉजिटिव गुण है वो देखकर उसको एंगेज किया जाए।
अमन्त्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति तत्र योजकः दुर्लभः।
तो ऐसा एक भी अक्षर लेटर नहीं है कि जो किसी मंत्र में आया नहीं है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति और नास्ति मूलम अनौषधम, ऐसा एक भी रूट मूलम नहीं है कि जो औषधि गुण वाला नहीं है। और अयोग्य पुरुषः नास्ति, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है कि जो नॉट क्वालिफाइड अयोग्य है। लेकिन दुर्लभता किसकी है? तत्र योजकस दुर्लभ, ऐसा योजक, ऐसा हर एक व्यक्ति को एंगेज करने वाला। तो बहुत बार जिसको एंगेजमेंट नहीं है वो केवल योजक के बारे में ही कंप्लेन करता रहता है कि ये मुझे एंगेज नहीं कर पा रहे। लेकिन ये वृक्षों के केस में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भगवान इन पेड़ों का भूतकाल में किया हुआ कंट्रीब्यूशन देखकर अब उनकी स्तुति कर रहे हैं। अगर योजक को ऐसा भूतकाल में कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है कि किस फील्ड में वो कर सकता है सेवा, तो भी डिफिकल्ट है। और योजक अगर कुछ बताता भी है कि ये आपकी आप में क्षमता है तो उसके अनुसार आप कार्य करो, लेकिन उसमें भी कुछ एक्सक्यूज बताएंगे और फिर कंप्लेन करते रहेंगे कि योजक प्रॉपर नहीं है तो ये ऐसा वन साइडेड ऐसा ब्लेम नहीं होना चाहिए, दोनों का जो पॉइंट है वो भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये प्रसंग, ये स्तुति पेड़ों की पूरी हो जाती है। और उसके बाद एक्चुअली इसके और भी दो तीन श्लोक है। एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणेर अर्थेर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। तो उन्हीं लोगों का जीवन सफल है जो अपने प्राण से, अपने अर्थ से, अपने बुद्धि से या वाचा से कुछ ना कुछ सेवा करने का प्रयास करते हैं। तो ये स्तुति पूरी होने के बाद भगवान सभी गायों को लेकर यमुना में जाते हैं। चार पांच घंटे उनको चराने के बाद अभी उनको भी प्यास लगी है, बीच में कोई पानी का स्रोत नहीं है। तो इतने सारे लाखों गायों को लेकर वो ये काम्य वन से यमुना के किनारे जो अशोक वन है उसमें उधर जाते हैं। और उधर पहुंचने के बाद सभी गायों को पहले पानी पिलाते हैं, फिर स्वयं पीते हैं और फिर उनके जो मित्र हैं वो पानी पीते हैं। तो ये भी एक वन से दूसरे वन जाना, ये भी रास्ता एकदम ऐसा पांच मिनट में पहुंचे गया ऐसा नहीं है, और समझ जाता है उधर। और उधर पहुंचने के बाद और भी कुछ कार्य करते और फिर ये बालकों को भूख लग जाती है। चलिए बालकों को नहीं, एक्चुअली बालक सोचते हैं, तर्क करते हैं। एक्चुअली कृष्ण ने प्लान किया था कि दोपहर के समय में यशोदा माता कुछ सेवकों की भेजेंगी और वो रास्ते के पास हमें पहुंचना है ये टाइम पर। लेकिन कृष्ण ने वो तो रास्ता लिया ही नहीं, उन्होंने वो रास्ता को त्याग कर कोई दूसरा ही रूट लिया और फिर अभी ये यमुना के किनारे पहुंच गए गायों को पानी पिलाने के लिए। तो वो बहुत भूखे होंगे, बलराम जी भी बहुत भूखे होंगे, तो उनकी भूख अभी खुद नहीं बताएंगे वो, तो इसलिए हमें ही कुछ उपाय करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि हम ही अभी बोलते हैं कि हे कृष्ण और बलराम। तो अगला अध्याय ये 23 नंबर का अध्याय इससे ही चालू होता है। तो इसमें एक श्लोक आता है, पहला ही श्लोक, हे श्री गोप ऊचुहु, सभी गोप एक सुर में, राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण येषा वै बाधते क्षुन्नस तथा तत्शांतिम कर्तुम अर्हथ। तो राम राम, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विश्लेषण देते कि राम राम जो स्वयं आनंद में रहते हैं, अभी हमें ये भूख एक शत्रु की तरह कार्य कर रही है, क्षुधा अभी हमारा जीवन अंत करने वाली है। एकदम कड़ी भूख लगने का अनुभव भी आजकल बहुत रेयर है क्योंकि इतना फूड इजीली अवेलेबल है, लेकिन क्षुधा व्यक्ति को मार भी सकती है। यहाँ पर ये भूख हमारी अभी शत्रु बन गई है और बहुत दुख दे रही है, लेकिन हे राम आप हमेशा आनंद में रहने वाले हैं, तो आप हमारा ये दुख दूर कीजिए और हमें भी आनंद प्रदान कीजिए। और महाबाहो, तो बलराम जी को महाबाहो ये शब्द इस्तेमाल किया संबोधन करते हुए, तो आप अनेक शत्रुओं को मारते हो लेकिन अब ये भूख रूपी शत्रु जो हमें परेशान कर रहा है इसको आप मारिए। दुष्ट निवरहन, तो ये भूख बहुत दुष्ट है इसका संहार कीजिए, तभी आपका ये कृष्ण और राम ये नाम सार्थक हो जाएगा। तो ईशा वै बाधते क्षुन्नस तत्शांतिम कर तुम अर्हत। तो ऐसी विनती करने के बाद फिर कृष्ण ने कहा कि ये जो अशोक वन है, ये अशोक वन के जो वृक्ष है अशोक वृक्ष, इनके फल खाने लायक नहीं है, ये हमारी क्षुधा को शांत नहीं कर सकते, और ये ऐसा वन है कि जहाँ पर कोई यात्री भी नहीं आता है जिससे हम कुछ दान मांग सकते, तो आप ये वन में एक पगडंडी, एक छोटा सा पैदल चलने वाला रास्ता ढूंढिए, और यज्ञशाला की कुटियाँ कहाँ हैं वो देखते हुए ये पगडंडी के रास्ते के अनुसार चलते जाइए, और फिर अंत में आप कहाँ पहुँचेंगे, ये जहाँ पर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं तो उधर आप पहुँच जाओगे, और फिर उन ब्राह्मणों से आप ये कुछ अन्न भिक्षा में मांगना। तो एक्चुअली जानबूझकर भगवान कृष्ण ने उनको उधर भेजा और खुद एक टीले के ऊपर चढ़ गए, और ये कहाँ जा रहे अभी, उधर जाने के बाद क्या क्या आदान प्रदान हो रहा है ये ब्राह्मणों का, ये सब वो खुद देखना चाह रहे थे। तो कृष्ण के कहने के अनुसार सब ग्वाल बाल उधर जाते और बहुत देर तक पहले इंतजार करते हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण जानबूझकर उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, वो आए हैं आने दो उनको, और फिर ये ग्वाल बाल रिक्वेस्ट करते हैं, हे विप्रवरो या भूमि पर होने वाले देवताओं, आप कृपा करके हमारी तरफ दो मिनट ध्यान दीजिए। तो एक तो बात इतना देर तक वेट करवाया, और दूसरी बात वो जो भी मंत्र बोल रहे थे हूँ फट सौषट औषट, ये जो यज्ञ के टाइम बोले जाते हैं मंत्र जिसमें कृष्ण का नाम बिल्कुल नहीं है, ऐसे शब्दों को सुनना ये भी उनके लिए बहुत बड़ी तपस्या थी, लेकिन फिर भी अभी कृष्ण ने बोला है, कृष्ण ने कहा है, इसलिए यहाँ पर हमें रुकना चाहिए। तो कृष्ण के लिए प्रभुपाद ने भी कितने घंटे वेट किया था सुमति मुरारजी के ऑफिस के बाहर, कई घंटे हैं, दिन भर सुबह से ही शाम तक वो उनका जो सेक्रेटरी था वो बता ही नहीं रहा था सुमति मुरारजी को कि ऐसे ऐसे स्वामी जी आपका इंतजार कर रहे हैं। फाइनली वो सुमति मुरारजी ने ही देखा कि ये स्वामी जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। तो प्रभुपाद अगर ऐसा इंतजार नहीं करते, ये गोपों के पदचिन्ह में प्रभुपाद भी चले हैं, अगर वो वैसा इंतजार नहीं करते तो वो अमेरिका ही नहीं जाते, इस्कॉन की स्थापना नहीं होती और हम भी भक्ति में नहीं आते कभी। एक व्यक्ति के धैर्यशील उधर धैर्य रखकर इंतजार करने का फल, तो हम भी कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएंगे या कभी फंड कलेक्शन के लिए जाएंगे या कभी सब्जी मार्केट में सब्जी परचेस करने के लिए, आजकल तो अभी सेतु बंद प्रभु देख रहे हैं लेकिन पहले ब्रह्मचारी ही जाते थे। तो ऐसे अलग अलग परिस्थितियों में हमें भी इंतजार करना पड़ सकता है, तो उस समय ये गोपों ने कैसा, कृष्ण के मित्रों ने कैसा इंतजार किया ब्राह्मणों के पास, तो ये प्रसंग हम याद कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये ब्राह्मण लोग सोचते हैं कि ये तो वैश्य वैश्यों के लड़के ही हैं, तो वैश्य तो जनरली दान मांगते नहीं, ऐसा भीख मांगते नहीं, और इनके कपड़े भी अच्छे हैं और ये वैश्य है, वैश्यों को तो दान नहीं देना चाहिए, तो इसलिए वो जानबूझकर उनको टाल देते हैं। तो ये ब्राह्मणों का इंटेलिजेंस वो लगा रहे हैं लेकिन ये नहीं सोच रहे कि ये केवल एक टाइम उनकी भूख मिटाने के लिए अन्न मांग रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यूसली अन्न मांग रहे हैं या आगे भी मांगेंगे। तो इसमें एक तरफ भगवान नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, तो ब्राह्मणों के ऊपर विशेष अनुग्रह होने वाले भगवान नमो ब्राह्मण देवाय, लेकिन उन्हीं ब्राह्मणों की अभी वो कमियां, उनके क्या बिहेवियर में फॉल्ट है वो बता रहे हैं, और जो इनसिग्निफिकेंट पेड़ है उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो ऐसा ये भगवान ऐसे पार्शल नहीं है कि ब्राह्मणों की ही हमेशा साइड लेते हैं। जब उनका बिहेवियर खराब हो जाता है, गलत हो जाता है, तो उनके बारे में भी वो क्या उसमें कमी है वो इस प्रसंग में बता रहे हैं। तो एक तरफ हम भी ब्राह्मण बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो इतना ही सेल्फ सेंटर्ड बन जाते हम, केवल खुद के बारे में ज्यादा विचार करते हैं। तो कितना हद तक मैं दे रहा हूं, सामान्य जनों को कितना दे रहा हूं, सोसाइटी को कितना दे रहा हूं, या मैं अन्य मेरे भक्तों को, कलीग जो है उनको कितना सेवा कर रहा हूं। ये जीव दया के भी बहुत कैटेगरी है, केवल जीव दया यानी कि नए लोगों को ही दया दिखानी ऐसा नहीं है, जरा अन्य भी आजू बाजू होने वाले जीव उनका भी ध्यान रखिए। केवल बाहर के ही जो भक्त नहीं है उनको भक्त बनाने का प्रयास करना एक तरफ प्रकार की जीव दया हो सकती है। तो ब्राह्मणों का और ये पेड़ों का, तो ये कंपैरिजन, तो ये बहुत जरा इसके ऊपर और आप गहराई से विचार कर सकते हैं। और फिर ये ब्राह्मणों से डिसअपॉइंट होकर ये गोप सब वापस आ जाते हैं, और फिर कृष्ण उनको बता दे कि आप अभी ब्राह्मणियों, ये ब्राह्मणों की पत्नियां हैं उनके पास जाइए। और फिर उनका जो भाव देखकर कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर उनके ऊपर कैसी कृपा करते हैं कि आगे की इस 23 नंबर के अध्याय में आएगा। तो आज के प्रवचन में मैं यही स्ट्रेस करना चाह रहा था कि कृष्ण कथा, डायरेक्ट कृष्ण कथा, और ये कथा करते करते लेसन्स अपने आप आ जाएंगे। और जीव गोस्वामी की ये टीका या गोपाल चंपू नामक ग्रंथ में भी ऐसे लेसन्स दिए हैं, कि विशेष करके आज के इसमें ग्वाल बाल अपनी भूख के बारे में नहीं सोच रहे थे, लेकिन अपने इस कृष्ण और बलराम की भूख के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे। और जो इनसिग्निफिकेंट जीवात्मा है उसमें भी कैसे अच्छाइयाँ देख सकते हैं। तो और जो ब्राह्मण इतना विद्वान है वो भी बेनिफिट नहीं कर सकता दूसरों का, तो ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में न हो इसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। तो आज मैं इधर ही रुकता हूँ, किसी को कोई कमेंट क्वेश्चन करने हो तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो हम इधर ही रुकते हैं। नाम रो रो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय।